جزاك الله. قال كابنا وعجب الجنة حلاله وحرامه حرام أحسن وطبعا فيك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا نحن له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بس لاس میں ہم مقدمہ معارف القرآن سے پڑھ رہے ہیں، وائس لو ہے. اچھا، آئی ڈونٹ نو وائی، کیونکہ یہاں پر اب میری اپنی وائس لو ہوگی، تھوڑا انشاءاللہ گلا صاف ہوگا تو پھر آپ کو کلیئر آواز آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، تو اس کلاس کے اندر ہم مقدمہ معارف القرآن سے پڑھتے ہیں. علوم القرآن کا موضوع چل رہا ہے، اور اس میں جو آخری عنوان ہم نے شروع کیا تھا وہ قرآن کریم کے 7 حروف اور قراءتیں. 7 حروف اور قراءتیں. تو حدیث مبارکہ ہم نے پڑھی تھی کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فقرأوا ما تیسر منہ. ٹھیک ہے، کہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس ان میں سے جو تمہارے لیے آسان ہو اس طریقے سے پڑھ لو. تو علماء کے درمیان پھر اس کے اوپر کافی ساری ڈسکشن رہی ہے کہ حروف سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے، تو جو سب سے زیادہ راجح تشریح علماء نے لکھی ہے اس کی، وہ یہی ہے کہ ان حروف سے مراد جو ہے وہ قراءتیں ہی ہیں، مختلف قراءتیں سے. ٹھیک ہے، اس سے مراد کوئی الگ چیز نہیں ہے. بہرحال تو وہ ان قراءتوں کا جو اختلافات کی نوعیتیں ہیں وہ ہم پچھلی کلاس کے اندر پڑھ چکے ہیں، جیسے اسماء کا اختلاف، افعال کا اختلاف، وجوہ اعراب کا اختلاف، تقدیم و تاخیر وغیرہ. ٹھیک ہے، تو یہ 7 نوعیتیں، یعنی سمجھ لیں کہ 7 مختلف طریقوں سے جو ہے نا وہ ان کے درمیان اختلاف ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. اور آخری بات جو ہم نے پڑھی تھی وہ یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت قرآن کے معاملے میں غلط فہمیاں رفع کرنے کے لیے اپنے عہد خلافت میں قرآن کریم کے 7 نسخے تیار کرائے تھے. ٹھیک ہے، پہلے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے سامنے جو ہے نا وہ اس بات کو ویریفائی بھی کیا تھا، بلکہ ری کنفرم کیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے باقاعدہ، ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف. ٹھیک ہے نا، ممبر کے اوپر بیٹھ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کس کس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ والی حدیث سنی ہے، وہ کھڑے ہو جائیں. تو اتنے سارے صحابہ کھڑے ہو گئے کہ ان کا شمار کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو حدیث ہے نا یہ متواتر حدیث ہے، حدیث متواتر ہے. تو یعنی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ قرآن جو ہے وہ قرآن مجید 7 احرف کے اوپر، یعنی 7 حروف کے اوپر نازل ہوا، کوئی صرف ایک حرف کے اوپر نازل نہیں ہوا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت قرآن کے معاملے میں غلط فہمی رفع کرنے کے لیے اپنے عہد خلافت میں قرآن کریم کے 7 نسخے تیار کرائے، اور ان 7 نسخوں میں تمام قراءتوں کو اس طرح سے جمع فرمایا کہ قرآن کریم کی آیتوں پر نقطے اور زیر زبر پیش نہیں ڈالے. ٹھیک ہے، یعنی یہ گنجائش چھوڑ دی کہ مختلف قراءتوں کے لحاظ سے جو ہے نا وہ پڑھنے والا اس کو اس طرح سے پڑھے. مثال کے طور پر سب سے آسان مثال تو اردو زبان والوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اردو زبان جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اس کے اندر زیر زبر پیش نہیں ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب جو ہے وہ اردو کا ایک لفظ ہے، اس کو کوئی جو ہے وہ یعنی فار ایگزامپل سامنے جو ہے وہ عدنان لکھا ہوا ہے میرے. ٹھیک ہے، تو آپ اردو میں عدنان لکھیں گے تو کوئی اس کو عدنان بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اس کو عدنان بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی اس کو عدنانن بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اس کو عدنانن بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اس کو عدنانن بھی پڑھ سکتا ہے. اگر آپ نے اعراب ڈال دیے زیر زبر پیش ڈال دیے تو پھر صرف ایک ہی طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر نہیں ڈالے تو پھر بہت سارے مختلف انداز سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے نقطے اور زیر زبر پیش نہیں ڈالے، تاکہ انہی مذکورہ قراتوں میں سے جس قرات کے مطابق انہیں ہاں جس قرات کے مطابق چاہیں پڑھ سکیں۔ اس طرح اکثر قراتیں اس ایک رسم الخط میں ہی سما گئیں، ٹھیک ہے؟ اور جو قراتیں رسم الخط اس والے رسم الخط میں نہ سما سکیں، یعنی اس طرح کی جو لکھنے کا انداز تھا اس میں نہ سما سکیں، تو ان کو محفوظ رکھنے کا طریقہ آپ نے یہ اختیار فرمایا کہ ایک نسخہ آپ نے ایک قرات کے مطابق لکھوایا اور دوسرا دوسری قرآت کے مطابق امت نے ان نسخوں میں جمع شدہ قرآتوں کو یاد رکھنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ علم قرآت ایک مستقل علم بن گیا۔ مثال کے طور پر پیچھے پچھلے پیج کے اوپر ہی ہم نے یہ بھی تو اختلافات پڑھے تھے نا کہ کہیں پر تجری من تحتہا الانہار ہے اور کہیں پر صرف تجری تحتہا الانہار ہے، ٹھیک ہے؟ من ہے ہی نہیں، تو اب زیر زبر پیش نہ ڈال کر کے یا نقطہ نہ ڈال کر کے اس اختلاف کو تو ایک رسم الخط میں نہیں سمایا جا سکتا نا، یہ تو اکوموڈیٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے پھر یعنی اس قسم کے جو اختلافات تھے باقاعدہ لفظی اختلافات، ٹھیک ہے؟ یعنی لفظ ہی جو ہے وہ بالکل مختلف استعمال ہوا ایک قرآت کے اندر دوسرے میں مختلف، تو اس کے لیے پھر انڈیویجول نسخے یعنی انڈیویجول جو کاپیز ہیں وہ تیار کی گئیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد امت نے ان کو یاد رکھنے کا اہتمام کیا اس قدر کہ مستقل علم بن گیا، اور سینکڑوں علماء قراء اور حفاظ نے اس کی حفاظت میں اپنی عمریں خرچ کر دی اور آج تک خرچ کیے جا رہے ہیں۔ قراءت میں قبولیت کا معیار، یعنی کیسے کس بیسس پر کسی قراءت کو قبول کیا جائے گا اور اس کے اوپر اس کا نسخہ بنایا جائے گا، یہ معیار کیا سیٹ ہوا؟ دراصل ہوا یہ تھا کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کے 7 نسخے مختلف خطوں میں بھیجے تو ان کے ساتھ ایسے قاریوں کو بھی بھیجا تھا جو ان کی تلاوت سکھا سکیں۔ چنانچہ یہ قاری حضرات جب مختلف علاقوں میں پہنچے تو انہوں نے اپنی اپنی قراءتوں کے مطابق لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی اور یہ مختلف قراءتیں لوگوں میں پھیل گئیں۔ اس موقع پر بعض حضرات نے ان مختلف قراءتوں کو یاد کرنے اور دوسروں کو سکھانے ہی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اور اس طرح علم قراءت کی بنیاد پڑ گئی۔ جس طرح جس علم صرف کی بنیاد پڑی، بعد میں جا کر علم النحو کی پڑھی، علم الاصول کی پڑھی، علم بلاغہ کی بنیادیں پڑھی، یہ سارے الگ الگ برانچز آف نالج جو ہیں وہ بعد میں بنے نا ضرورت کی وجہ سے، اسی طرح اس کی بھی ضرورت پیش آئی تو یہ بھی ایک پوری کی پوری مستقل برانچ آف نالج بن گئی۔ اور ہر خطے کے لوگ اس علم میں کمال حاصل کرنے کے لیے ائمہ قراءت سے رجوع کرنے لگے، کسی نے صرف ایک قراءت یاد کی، کسی نے دو، کسی نے تین، کسی نے سات، اور کسی نے اس سے بھی زیادہ۔ اس سلسلے میں ایک اصولی ضابطہ پوری امت میں مسلم تھا، یعنی تسلیم شدہ ایک ضابطہ تھا اور ہر جگہ اسی کے مطابق عمل ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ صرف وہ قراءت قرآن ہونے کی حیثیت سے قبول کی جائے گی جس میں 3 شرائط پائی جاتی ہوں۔ پہلی شرط کہ مصاحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے جو صحابہ کے ساتھ مل کر کے رسم الخط تیار کیے ہیں نا، یہ ان سے ہٹ کے نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اکوموڈیٹ ہو سکتا ہو۔ دوسرا کہ عربی زبان کے قواعد کے مطابق ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی عربی زبان کے قواعد کے خلاف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا اور عربی زبان اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اسٹیبلش فرمائی ہوئی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ قرآن مجید ایک نئی لینگویج لے کر کے آیا، اب لوگوں نے اس لینگویج کو سیکھنا شروع کیا پھر قرآن مجید ان کو سمجھ میں آیا، یا ایک نئی لینگویج کی بنیاد پڑی، ایسا نہیں تھا، بلکہ لینگویج اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اسٹیبلش کر دی تھی، اور یہ صرف عربوں میں، یعنی صرف جو ہے وہ جزیرت العرب میں اسٹیبلش نہیں کری تھی، بلکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی زبان عربی ہی تھی، جنت کی لنگوا فرینکا کہتا ہے نا وہ جو جس میں بات کرتے ہیں لوگ، جنت کی زبان عربی ہی تھی، اور یہی زبان جو ہے وہ انسان یعنی دنیا کے اندر بھی بڑے لمبے عرصے تک چلتی رہی، حتیٰ کہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنت کی نعمت سے انسانوں کو محروم کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ نعمت واپس لے لی گئی اور صرف کچھ कुछ जगहों पर बाकी रही, वरना सारी इंसानियत की जुबान उस वक्त अरबी ही थी। ठीक है, तो अब फिर जो है वो खाली इस जजीरतुल अरब के अंदर वो बाकी रही, अल्लाह की हिकमत के मुताबिक आखिर में कुरान इसी जुबान में नाजिल करना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाकये में हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अरबी भी आती थी, और उन्होंने अजीज मिस्र के सामने जाकर के अपनी अरबी भी जो है ना वो भी बताई थी कि मुझे ये भी आती है, इब्रानी भी आती है और सुरियानी भी आती है और अरबी भी आती है और भी जुबानें आती हैं। वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा तीसरा स्टैंडर्ड क्या था कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद के साथ साबित और आइम्मा क़िराअत में मशहूर हो। ठीक है, यानी सनद की असल इम्पोर्टेंस है ना हमारे दीन के अंदर, सो मच सो, यानी जो चेन ऑफ नरेशन होती है, सो मच सो कि जो कंटेंट आप तक पहुंच रहा है उस कंटेंट से ज्यादा, उस मवाद से ज्यादा सनद की अहमियत। ठीक है ना, क्योंकि मवाद को आप किस बुनियाद पर ऑथेंटिकेट करेंगे कि ये सही बात है कि ये गलत बात, किस बुनियाद पर? अपनी अकल की बुनियाद पर ऑथेंटिकेट करेंगे। ठीक है, क्या अब मेरी अकल कहती है कि ये ठीक है तो इस वजह से ये ठीक है? नहीं, दीन की कितनी सारी बातें हैं जो कि हमारी छोटी सी निक्की सी अकल में समाई नहीं सकती, आ ही नहीं सकती हमारी अकल के अंदर, तो उनको क्या आप रिजेक्ट कर देंगे कि नहीं ये तो सही है ही नहीं? नहीं, बल्कि अगर इसकी सनद चेन ऑफ नरेशन सही है, ठीक है, तो फिर वो चीज मुझे समझ में आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सही है। ठीक है, और अगर चेन ऑफ नरेशन खराब है तो फिर बिल्कुल उसका रिवर्स उसूल चलता है कि वो कितनी ही अकल को समझ में आने वाली बात हो, कितनी ही जो है वो अच्छी लगने वाली बात हो, लेकिन चेन ऑफ नरेशन सनद उसकी गलत है या झूठी है, ठीक है, तो फिर उसको हम कबूल नहीं करेंगे। पूरी तहकीक करेंगे, यानी एक नया रिसर्च शुरू करेंगे और उस रिसर्च के ऊपर फिर से कंफर्म करेंगे कि ये जो कंटेंट हम तक पहुंचा है क्या इसकी कोई सही सनद भी है या नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च की जाएगी। फतबैयनू, रिसर्च करो। ठीक है, और अगर रिसर्च में पता चला कि हाँ इसकी कोई सही सनद भी मौजूद है तब हम उसको कबूल कर लेंगे, वरना उसको रिजेक्ट कर देंगे। ये उसूल है। ठीक है, तो क़िराअत के अंदर भी यही उसूल अप्लाई किया गया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, अल्लाह डिड तिलावत बिफोर क्रिएटिंग द वर्ल्ड, सो इट मीन्स दैट इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट मखलूक। अल्लाह की तिलावत मखलूक थी? नहीं, अल्लाह की तिलावत जो है ना किसी की जो आवाज होती है वो मखलूक नहीं होती है, वो उसकी सिफत होती है। ठीक है, तो कुरान मजीद जो है वो क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला ने उसको किसी क्या कहते हैं तिलावत की बात कर रहे हैं ना, अब तो तिलावत जो है वो मखलूक नहीं है। हाँ, वॉज इट वॉज आई मीन द लैंग्वेज वॉज मखलूक, लैंग्वेज वॉज मखलूक। अल्लाह ताला की लैंग्वेज अरबी, वैसे तो अल्लाह ताला को सारी लैंग्वेज और सारी लैंग्वेजेस जो है वो अल्लाह ताला ही की मखलूक हैं, लेकिन अरबी जुबान को अल्लाह ताला की मखलूक कहा जाएगा ये कभी हमने इसको कहीं पढ़ा नहीं और कभी सुना नहीं। ठीक है, कि अरबी जुबान जो अल्लाह ताला ने अपनी तिलावत के लिए इस्तेमाल फरमाई तो वो मखलूक थी, बल्कि ये जरूर है कि उस जुबान को जहां पे लिखा गया ना, जिस कागज पे लिखा गया या जिस टैबलेट पे लिखा गया, जिस तख्ती पे लिखा गया, जिस लौह पे लिखा गया, वो लौह में मखलूक थी, वो लौह मखलूक थी, वो तख्ती मखलूक थी, वो कागज मखलूक था। ठीक है ना, लेकिन खुद जो कलाम अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं वो मखलूक नहीं बल्कि वो सिफत अल्लाह ताला की। ठीक है, अच्छा, जिस क़िराअत में इनमें से कोई एक शर्त भी मफकूद हो उसे कुरान मजीद का जुज नहीं समझा जा सकता, नहीं नहीं समझा जाता जा सकता। इस तरह मुतवातर क़िराअतों की एक बड़ी तादाद नस्लन बाद नस्लन नकल होती रही, नस्ल बाद नस्ल नकल होती रही, और सहूलत के लिए ऐसा भी हुआ कि एक इमाम ने एक या चंद क़िराअतों को इख्तियार करके उन्हीं की तालीम देनी शुरू कर दी। ठीक है, क्योंकि हर बंदा जो है वो अगर 25ों तिलावतें हैं, दर्जनों तिलावतें हैं, तो हर बंदा सबको तो नहीं कर सकता उनका अहाता, तो किसी ने कुछ की, किसी ने कुछ की, उनकी तालीम आगे देनी शुरू कर दी। ठीक है भाई, फायदे की चीज़ थी ना। तो हमारे दीन के तो बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है अद्दीनुन नसीहा, कि तुम दूसरों के लिए खैरख्वाही करो। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ईमान वाला किसी फायदे वाली चीज को सीखे जिससे कि उसको फायदा होता हो, जिससे कि उसके नुकसान जो है वो दूर होते हों, उसको हार्म से जो है वो हिफाजत मिलती हो, और वो उसको ले करके दबा करके बैठ जाए, राइट? सांप की तरह खजाने के ऊपर बैठ जाए, और बस जो है ना, वो सांप तो वैसे अपने खजाने से फायदा भी नहीं उठा रहा होता, ठीक है? तो मोमिन जो है वो किसी खैर की चीज के ऊपर बैठ जाए और आगे फॉरवर्ड ना करे उसको, ठीक है ना? जब भी तो इसी बात को तो इस्तेमाल करते हुए फिर एक जमाना था, अभी तो वो खत्म हो गया, अब तो लोग नहीं लिखते इस तरह की चीजें, लेकिन हर मैसेज को बिल्कुल आता था ना, इफ यू फाइंड इट यूजफुल फॉरवर्ड इट, राइट? इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं। गलत नहीं लिखा होता था, लेकिन मसला उसके अंदर ये था कि यूजफुल की जो है ना, वो तहकीक के बगैर ही उसको आगे बढ़ाना शुरू कर देते थे। भाई जब आप तहकीक कर चुके हैं कि कोई चीज यूजफुल है, बेनिफिशियल है, आपके लिए फायदेमंद है, अब उसको लेके बैठना ये ज्यादती है, ठीक है? उसको पहुंचाएं लोगों की खैर ख्वाही में, उसको आगे पहुंचाएं, ठीक है? और आज सुबह तो एक बड़ी अहम बात भी हुई है खवातीन की क्लास के अंदर, कि अगर आप जिस बात को आप खुद हक समझते हैं उसको अगर आप आगे नहीं पहुंचाते हैं ना, तो फिर एक ना एक दिन आप पछताएंगे, एक ना एक दिन आप पछताएंगे, ठीक है ना? यू विल बी रिग्रेटफुल, यू विल बी रिग्रेटफुल, आपको नादिम होना पड़ेगा। और खाली ये नादिम नहीं, हाय काश कि मैं पहुंचा देता तो मेरे सवाब में इजाफा हो जाता, नहीं, इतनी सी बात नहीं है, बल्कि पछताने का मतलब ये भी होता है, और ये ज्यादा बड़ा पछताना होता है कि कल को जो है ना, वो आपके ऊपर कोई ऐसे हालात आ जाएं कि जिन हालात से निकलने के लिए आपको खसूसी मदद की जरूरत है, और अब कोई मदद करने वाला ना हो आपके पास, कोई मदद करने वाला ना हो, उस वक्त ज्यादा बड़ा पछतावा होता है ना, ठीक है? तो वो क्यों नहीं होते मदद करने वाले, क्यों नहीं होते लोग अवेलेबल, उसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि हमने खैर को दबा लिया होता है अपने पास, ठीक है ना? हम उसके ऊपर जो है ना, वो मैंने बैठ गए होते हैं, वी स्टार्ट सिटिंग अपॉन इट, वी डोंट टेक इट टू अदर पीपल, ठीक है ना? तो सहाबा ऐसा नहीं करते थे, सहाबा ऐसा नहीं करते, सहाबा को जहां कोई खैर की बात मिलती थी ना, वो दौड़े लगा देते थे, दौड़े लगा देते थे, और लोगों को यानी फौरन बताना शुरू कर देते थे। अब जो मानता था वो आ जाता था, और जो नहीं मानता था वो फिर अवॉइड करना शुरू हो जाता था, या वो जो है वो उनका दुश्मन बन जाता था, लेकिन करते थे अपना एक, ठीक है? अच्छा, तो बल्लिगु अन्नी वलो आया, अब तक नबी अलैहि सलाम ने जज़ाकुमुल्लाह हुक्म भी फरमाया कि तुम मुझसे चीज लेकर के आगे पहुंचाओ, अगरचे के वो सिर्फ एक आयत ही क्यों ना हो। और इस आयत का मतलब जो है ना, वो कुरान मजीद की आयत या हदीस भी इसके अंदर शामिल है, यानी नबी अलैहिस्सलाम की बातें जो कुरान की शक्ल में है, या हदीस मुबारक की शक्ल में है, या सुन्नत की शक्ल में है, सारी की सारी चीजें फायदे के लिए, आगे फैलाओ, आगे पहुंचाओ, आगे पहुंचाओ, बल्लिगो अन्नी वलो आया, ठीक है? हम ये काम नहीं करते हैं ना, इसकी वजह से हमारे ऊपर क्रिटिकल सिचुएशंस आती हैं, एंड देन वी डोंट हैव एनी प्लेस टू टर्न टू, अल्लाह ताला की मदद नहीं आती हमारे लिए। अब जब अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, तो फिर जो है वो कौन आपकी मदद कर सकता है? कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो इस वजह से ना, ये हमारे मिजाज का हिस्सा होना चाहिए। आप माने ना माने, लेकिन ये आज जो है वो आपको बता रहा है, जिसके मिजाज का ये हिस्सा होता है ना खैर ख्वाही, बस अल्लाह ताला उसको पसंद फरमा लेते हैं, अल्लाह ताला उसको कबूल कर लेते हैं, अपने दीन के लिए कबूल कर लेते हैं, अपने दीन की मेहनतों के लिए कबूल कर लेते हैं, जिसके मिजाज में अल्लाह के बंदों की खैर ख्वाही। तो हमें इसको अपने मिजाज में पैदा करने की जरूरत है, यानी हमारा ओढ़ना बिछोना ये हो जाए, ठीक है ना? हमारे लिए ये चीज अनएक्सेप्टेबल हो जाए कि कोई चीज मेरे पास खैर की हो और मैं वो दबा के बैठ जाऊं अपने पास, मैं वो आगे ना पहुंचाऊं, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हमारी सोच पर बन जाए, ठीक है? फिर देखिएगा अल्लाह की कैसी कैसी मदद आती है, ऐसे आएगी कि आप हैरान परेशान, और आपको नजर भी ना आ रहा हो, लेकिन जो नजर वाले हैं उनको नजर आ रहा होगा कि अल्लाह की मदद कैसे आ रही है, ठीक है? और अल्लाह ने कुरान मजीद में, ये तो हदीस मुबारक इन्होंने फरमाई ना, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म भी तो ये फरमाया, अल्लाह ताला ने कंडीशनल स्टेटमेंट भी तो दिया ना, नहीं कि इन तंसुरुल्लाह यंसुर, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा, वह युसब अकदामक, और तुम्हें साबित कदम बना देगा, तुम्हें इस्टेब्लिश कर देगा। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने कंडीशन लगा दी, अल्लाह ताला ने कंडीशन लगा दी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन को पूरा करना, ये हमारी द बॉल इज इन आवर कोर्ट। ठीक है, ये हमारे ऊपर है। बहरहाल हमारे सामने इस तरह की चीजें आती रहती हैं। कल रात ही घर में बात हो रही थी किसी के बारे में, तो यही मैंने कहा, उन लोग दबा के बैठ जाते हैं लोग ना, फिर उसके बाद जब उनको जरूरत पड़ती है तो फिर कोई होता ही नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो कोई होता ही नहीं है, अल्लाह की मदद ही कोई नहीं आती, राइट? तो फिर उसके बाद जो है वो जिंदगी एक अजाब बन जाती है, फिर उसके बाद जिंदगी एक मुसीबत बन जाती है। लेकिन उसकी वजह ये बनती है कि हमने अल्लाह की मदद की तरफ तवज्जो नहीं करी, मेरा फायदा हो गया बस, ठीक है। ठीक है, तो बहुत बड़ी हमारी मिस्टेक होती है। ठीक है यार, खैर की चीज मीन्स नॉलेज इन दिस कॉन्टेक्स्ट, खैर की चीज मीन्स एनी थिंग, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज होती है। ठीक है, क्योंकि हम कमजोर होते हैं तो अक्सर मदरू बन जाते हैं। इजन इट बेटर टू कीप क्वाइट? नहीं, ठीक है, हम कमजोर होते हैं तो अक्सर मदरू बन जाते हैं। इजन इट बेटर टू कीप क्वाइट? पहली बात तो ये कि आप कमजोर हैं क्यों, राइट? आप कमजोर हैं क्यों? ठीक है ना, उसकी वजह ये होती है कि आपकी निस्बत कमजोर होती है, आपकी निस्बत कमजोर होती है। देखें, हम कमजोर हैं, हम कमजोर थे और हम कमजोर रहेंगे, ये बात याद रखें। हम कमजोर थे, हैं और रहेंगे, हम कमजोर ही हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारी निस्बत कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारा ताल्लुक कमजोर नहीं होना चाहिए। ये हमारा फॉल्ट है कि हमारा ताल्लुक क्यों कमजोर होता है, अपने बड़ों के साथ, अपने ऊपर वालों के साथ ताल्लुक क्यों कमजोर होता है। अगर ये कमजोर है देन दिस इज इवन ए बिगर प्रॉब्लम, दिस इज इवन ए बिगर प्रॉब्लम, आपका ऊपर से ताल्लुक क्यों कमजोर, तो वो तो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये कि आपका ताल्लुक क्यों कमजोर है। तो आप जो मधु बन जाते हैं, जैसे है ना, हम दाई नहीं होंगे तो मधु बन जाएंगे, फिर उन्होंने आगे से एक और बात करी कि हम इसीलिए चुप क्यों नहीं रहते क्योंकि हम मधु बन जाते हैं। अल्लाह के बंदे क्यों मधु बन जाते हो? क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक कमजोर है। जिसका ताल्लुक मजबूत होता है ना, वो मधु नहीं बन सकता, वो मधु नहीं बन सकता। ठीक है, इज इज द केस विद वर्ल्डली नॉलेज एज वेल। इफ द वर्ल्डली नॉलेज वॉज बेनिफिशियल, ट्रूली बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, यस दिस इज ट्रू फॉर वर्ल्डली नॉलेज, एब्सोल्यूटली ट्रू, इफ इट वॉज बेनिफिशियल। ठीक है, तो वो बेनिफिशियल है कि नहीं है, वो फिर आपको नॉलेज वालों से कंफर्म कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक, साजिश उसको अलहमदुल्ला कभी कहते हैं ना, वो एक तो ये है कि अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, है ना, अल्लाह ताला ने ये भी तो हुक्म फरमाया ना अपने नबी अलैहिस्सलाम को, आप अपने नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें भी हुक्म फरमाया, वह अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। ठीक है, कि जहां तक अल्लाह ताला की नेमतों का जिक्र है ना, तो उसको बयान करो। ठीक है ना, तो कभी कभी उलमा हमें ये भी कहते हैं कि अपने ऊपर कोई अल्लाह ताला की मेहरबानी हो तो लोगों को बताओ भी, और ये इस नीयत से नहीं कि अपने तकब्बुर की वजह से, अपने आप को कामयाब समझने की वजह से, बल्कि इस वजह से कि दूसरों को भी इसकी तरगीब मिले, तरगीब की नीयत से खुल करके सदका करना, तरगीब की नीयत से अपने ऊपर किसी नेमत का इजहार कर देना, ये फिर नाजायज नहीं होता, नीयत के ऊपर डिपेंड करता है और अल्लाह ताला नीयतों की बुनियाद पर ही फैसला करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, साजिश के साथ अल्लाह की खुसूसी मेहरबानी हुई कि ये एक अजीब मिजाज। ठीक है ना, तो जब पहले तो हमें कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था, हमें तो इतना नहीं पता कि फ्लॉपी डिस्क जो है ना वो ऐसे डालते हैं, कैसे डालते हैं या किधर डालते हैं, इतना भी नहीं पता था कंप्यूटर के बारे में। लेकिन जब एक दफा पता चल गया ना कि ये कंप्यूटर्स जो हैं, ये जो है वो फायदे की चीज है, उस जमाने में जो थॉट थी दीन वीन का तो कुछ पता भी नहीं था ज्यादा, बस नमाज वमाज पढ़ लेते थे। तो कंप्यूटर जिस दिन कंफर्म हो गया ना कि हाँ जी ये फायदे की चीज है, ठीक है ना, इनफरादी तौर पर भी फायदे की चीज है, अपनी सोच थी, इज्तिमाही तौर पर भी फायदे की चीज है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने खानदान वालों को पकड़ पकड़ करके कंप्यूटर खरीदवाया। यानी अपने जो छोटे भाई बहन थे ना, कजन्स वगैरह, उनको पकड़ पकड़ करके उनके अब्बा को कन्विंस कर करके कि आप ये चीज खरीद लें, ये घर में होना बहुत जरूरी है, हत्ता कि खुद जो है ना वो दुकान लेकर के गए और वहां से कंप्यूटर दिलवाए। और इसी तरीके से पाकिस्तान के लिए जब समझ में आएगा जी पाकिस्तान की तरक्की के लिए कंप्यूटर बड़े जरूरी है, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। वो तो बाद में समझ में आया ना कि पाकिस्तान का मकसद क्या था और उसकी तरक्की के लिए क्या चीज जरूरी है, पहले तो नहीं पता था ये सारी बातें। तो उस वक्त था कि भी कंप्यूटर साइंस पाकिस्तान की तरक्की के लिए और निजात के लिए जरूरी है। तो फिर पाकिस्तान की कंप्यूटर साइंस के ऊपर जो है ना वो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इतना काम किया कि कंप्यूटर सोसाइटी के जो असल ऑफिशियल्स थे ना वो हमें आगे करने शुरू हो गए कि आप ही काम करें, हम हमसे तो कोई काम नहीं होता, आप ही करें ये वाला काम, ठीक है। तो ये खैर ख्वाही की नीयत होती है, ये खैर ख्वाही का जज्बा होता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं दीन के लिए, फिर अल्लाह ताला से मांगना भी पड़ता है, अल्लाह आप मुझे कबूल फरमा लीजिए अपने दीन के लिए, अपनी मेहनत के लिए अपने, ठीक है। तो हाउ डू वी एक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ताल्लुक, हाउ डू वी एसेस द स्ट्रेंथ ऑफ आवर ताल्लुक, बड़ों के बारे में बदगुमानी है कि नहीं है, इससे पता चल जाता है कि ताल्लुक जो है वो मजबूत है कि कमजोर है। हर वक्त जो है वो वसवसे आ रहे हैं उनके खिलाफ, उनके बारे में जो है उल्टे सीधे ख्याल आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ताल्लुक खराब है, ठीक है, या कमजोर है। दूसरा ये भी होता है कि भाई आपको कितनी मोहब्बत कुछ है, ताल्लुक है, कुछ फील करते हैं, कितना आपकी तवज्जो उनकी तरफ है, या सारी दुनिया में आप जो है वो हर जाई बने हुए हैं, हर जगह ही चले जाते हैं, हर जगह ही जो है वो आपकी है ना। तो इससे भी पता, ये भी एक ये समझ लें एक क्या कहते हैं उसको तो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। और फिर ये भी है कि भाई आप उनकी बात कितनी तवज्जो से सुनते हैं, ठीक है ना, कितना जो है वो आप उनकी बात को गौर से सुनते हैं, उनकी बात को जो है वो पढ़ते हैं, तो इससे भी जो है वो अपने ताल्लुक का पता चल जाता है कि आपका ताल्लुक है कि बस ऐसे ही बनाया हुआ है। बैत जैसे आजकल जो है ना तमाशे हो रहे हैं ना, बैत करा दो राइट, आप में से एक भाई कहते हैं ओ अगर कोई मसला हो रहा है ना उधर बैत करवा दो, राइट, ना अलिफ का पता, ना बे का पता, ना सा का पता, किसी चीज का पता नहीं, बैत करवा दो, ठीक है। तो ये खाली बैत करवा देने से कुछ भी नहीं होता, कुछ पता होना चाहिए तब जा करके होता है, लिटमस टेस्ट नहीं, एक और मैं वो कह रहा था। खैर एनीवे, तो सहाबा क्या करते थे कि वो फिर तालीम देनी शुरू कर, इधर से कोई चीज सीखी आगे जो है पढ़ानी शुरू कर दी, यहां से सारी बात शुरू हुई थी, और वो किरात उसी इमाम के नाम से मशहूर हो गई। फिर उलमा ने इन करातों को जमा करने के लिए किताबें लिखना शुरू करी, चुनाचे सबसे पहले इमाम अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हातिम सजस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, काजी इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अबू जाफर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस फन पर किताबें मुरतब की जिनमें 20 से ज्यादा किरातें जमा, ठीक है। फिर अल्लामा अबू बकर इब्ने मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब लिखी जिसमें सिर्फ 7 कारियों की किरातें जमा की गई थी। उनकी ये तसनीफ इस कदर मकबूल हुई कि ये 7 कुर्रा की किरातें दूसरे कुर्रा के मुकाबले में बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। बाज लोग ये समझने लगे कि सही और मुतवातर किरातें सिर्फ यही हैं। हालांकि वाकया ये है कि अल्लामा इब्ने मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने महज इत्तेफाकन इन 7 किरातों को जमा कर दिया था। इत्तेफाकन का मतलब यहाँ पर यह है कि उनकी कोई नीयत नहीं थी कि अपनी किताब के जरिए से ये प्रूव करें कि बस यही 7 कारियों की कराते हैं, उनकी नीयत ये नहीं थी, उन्होंने बस कर दिया, भाई 7 तक उनकी रसाई हुई होगी, उन्होंने अपनी किताब के अंदर 7 के लिख दिया, या उनके पास वक्त इतना ही था, दूसरे काम भी करने होंगे, तो उन्होंने 7, 8 की बजाय 7 लिख ली, 9 की बजाय 7 लिख ली। तो ये इत्तफाकन इसका ये मतलब है, वरना इत्तफाकन कोई चीज होती नहीं है, जहां अल्लाह है वहां पर इत्तफाक होता नहीं है। अल्लाह ने उनके दिन में डाला कि 7 लिख दो अपनी किताब के अंदर, लिख दी। उनका मंशा यह हरगिज नहीं था कि इनके सिवा दूसरी किरातें गलत या ना काबिले कबूल हैं। अल्लामा इब्ने मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के इस अमल से दूसरी गलत फहमी ये भी पैदा हुई कि बाज लोग सब आता अहरुफेन का मतलब ये समझने लगे कि इनसे यही 7 किरातें मुराद है, यानी 7 हरूफ से मुराद यही 7 किरातें हैं, ठीक है। जैसे पिछली क्लास के अंदर काफी बात हो चुकी थी कि 7 का जो अदद है ना ये अरबी जुबान के अंदर बोहतेरे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बोहतेरे जो है ये 70 से कम कम, 70 से कम कम, क्योंकि अगर 70 से ज्यादा तो उसके लिए 70 का अदद इस्तेमाल होता है, 70 का, ठीक है ना, लेकिन 700 से कम कम, यानी 70 से ज्यादा और 700 से कम, और अगर 700 इस्तेमाल होता है कि जैसे वो सूरह बकरा के अंदर आगमन है ना, वो जो नहीं एक डाली में से जो है, बाली में से जो है वो 700 दाने निकलेंगे, ठीक है ना, तो वो 700 का मतलब यानी इट कैन गो इन थाउजेंड्स, ठीक है, तो 7 का मतलब है 70 से पहले पहले बहुत ही है, जैसे उर्दू में हम दर्जनों कह देते हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि इकरात 10 है, मशहूर 7 है, इसलिए इसको सब अकरात कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये लिखा हुआ है, तो बाज लोग सब रुफेन का ये मतलब समझने लगे, यही सात करात है मशहूर है मुराद है, चुनाचे जिन्हें इब्ने मुजाहिद ने जमा किया है, हालांकि पीछे बताया जा चुका है कि ये सात करात है सही करातों का महज एक हिस्सा है, सबसेट है, वरना हर वो करात जो मजकूरा बाला तीन शराइत पर पूरी उतरती हो सही काबिल कबूल और इन सात हरूफ में दाखिल है जिन पर कुरान करीम नाजिल हुआ, ठीक है, तो वो तीन शराइत ऊपर हम पढ़ चुके हैं, फिर सात कुर्रा जो इब्ने मुजाहिद रहमतुल्लाह ने लिखे ना, तो वो यहाँ पे बकरा सराहतन लिख दिए हैं कि बहरहाल अल्लामा इब्ने मुजाहिद रहमतुल्लाह के इस कॉल से जो सात कारी सबसे ज्यादा मशहूर हुए वो ये हैं, नाफे बिन अब्दुल रहमान बिन अबी नुएम रहमतुल्लाह मुतवफ़ी 169 हिजरी, आपने 70 ऐसे ताबईन से इस्तफादा किया था जो बराह रास हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के शागिर्द थे, यानी ये खुद तबा ताबईन में से थे, इन्होंने ताबईन से इस्तेफादा किया जिन्होंने सहाबा ये तीन सहाबा से इस्तेफादा किया था, आपकी क़िरात मदीना तैयबा में ज्यादा मशहूर हुई और आपके रावियों में अबू मूसा कालून रहमतुल्लाह मुतवफ़ी 220 हिजरी और अबू सईद वर्ष रहमतुल्लाह, ये वर्ष भी बहुत मशहूर हैं जब क़िरात वगैरह की बात आती है तो मुतवफ़ी 197 हिजरी ज्यादा मशहूर है, फिर दूसरी क़िरात जो इब्ने मुजाहिद रहमतुल्लाह ने लिखी अब्दुल्ला बिन कसीर अद्दारी रहमतुल्लाह, आपने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु में से हजरत अनस बिन मालिक अब्दुल्ला बिन जुबैर और अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़ियारत की थी और आपकी क़िरात मक्का मुकरमा में ज्यादा मशहूर हुई और आपकी क़िरात के रावियों में बज्जी और कुंबुल रहमहुल्लाह ज्यादा मशहूर हैं, और तीसरी अबू उमर जब्बान बिन अला रहमतुल्लाह, आपने हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह और सईद इब्ने जुबैर रहमतुल्लाह ये रास्ते से हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत की है और आपकी क़िरात बसरा में काफी मशहूर हुई, आपकी क़िरात के रावियों में अबू उमर अद-दौरी रहमतुल्लाह अलैह और अबू शुएब सूसी रहमतुल्लाह अलैह ज्यादा मशहूर है, बसरा में ज्यादा मशहूर हो गए, तो आगे भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या हो रहा है कि है ना, ये गालिबन खुद या तो तबा ताबईन में से थे या तबा ताबईन के बाद वाली नस्ल में से थे, इन्होंने अपने जो सीनियर्स थे ना तो उनकी किरात यानी ये जो सात किराते थी तो इनसे पिछली जनरेशन के या तो वो कारी थे या इन्हीं की जनरेशन के थोड़े सीनियर हो रहा होंगे, ठीक है, तो गोया ये काम जो है वो किस जनरेशन के अंदर हुआ है, ये तबा ताबईन या उनके बाद वाली जनरेशन के अंदर ये काम जो है ना वो ज्यादा क्लियरिफाई हो गया ताकि कंपाइल होना शुरू हो गया किताबी फॉर्म के अंदर, ठीक है, चौथा हजरत अब्दुल्ला अल हिस्बी रहमतुल्लाह जो इब्ने आमिर रहमतुल्लाह के नाम से मारूफ हैं, आपने सहाबा रहमतुल्लाह अलैहिम में से रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम में से हजरत नुमान बिन बशीर और हजरत वासिला बिन असका रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की ज़ियारत की थी और क़िराअत कफन हजरत मुग़ीरा बिन शिहाब मखज़ूमी रहमतुल्लाह ने हासिल किया था जो हजरत उस्मान रहमतुल्लाह के शागिर्द थे, आपकी क़िराअत का ज्यादा रिवाज शाम में रहा, ठीक है, तो ये देख लें सेंटर्स ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन मक्का मुकरमा ऑफ कोर्स, मदीना तैयबा और इराक जिसमें बसरा कूफा ये मशहूर जगह हैं और शाम का इलाका, ठीक है, फिर बाद में फिर इजिप्ट काहिरा वगैरह ये सब भी सेंटर्स बने, हमजा बिन हबीब अज़ज़ियात मौला अकरमा बिन रबी अल-तीमी रहमतुल्लाह, आप सुलेमान आमश रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं, वो याहिया बिन वसाब रहमतुल्लाह की वो जर बिन हुबैश रहमतुल्लाह के उन्होंने हजरत उस्मान अली रहमतुल्लाह और अब्दुल्ला बिन मसूद रहमतुल्लाह अन्हुम से इस्तिफादा किया था, आपके रावियों में खल्फ बिन हशाम और खल्लाद बिन खालिद रहिमहुल्लाह ज्यादा मशहूर हैं, इनकी जगह नहीं लिखी हुई कि इनकी किराब कहाँ ज्यादा मशहूर है, आसिम बिन अबिन नजूद अल असदी आप जर बिन हुबैश रहमतुल्लाह के वास्ते से हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रहमतुल्लाह और अबू अब्दुर्रहमान सुलमी रहमतुल्लाह के वास्ते से हजरत अली रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं, आपके किरात के रावियों में शोबा बिन अय्याश रहमतुल्लाह और हफ्स بن سليمان رحمت اللہ علیہ زیادہ مشہور ہیں. آج کل عموماً تلاوت انہی حفص بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کی روایت کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو آج کل زیادہ تر جو قرآت جیسے ہم سنتے ہیں نا, عام سعودی قاری ہیں تو ایجپشن قاری ہیں, تو یہ غالباً یہی حفص قرآت کی ہوتی ہے. اور ساتویں ابو الحسن بن حمزہ القصائی النحوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے راویوں میں ابو الحارث مروزی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عمر الدوری رحمۃ اللہ علیہ جو ابو عمر کے راوی بھی ہیں زیادہ مشہور ہیں. مؤخر الذکر تینوں حضرات کی قراءتیں زیادہ تر کوفہ میں رائج ہوئیں. ٹھیک ہے, کوفہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ہی یعنی یہ فوجی چھاونی بنائی تھی حضرت عمر کے زمانے میں, اور یہاں پر جو ہے نا پھر پورا ایک اسلامک سولائزیشن اسٹیبلش ہوئی تھی, بڑے بڑے صحابہ یہاں پر منتقل ہوئے تھے, اور یہاں سے پھر دین کا کام جو ہے وہ آگے پھیلا تھا ایران کے علاقے میں, ہندوستان اور سینٹرل ایشیا وغیرہ. تو کوفہ ایک بہت ہی اہم مقام بن گیا تھا. 10 اور 14 قرآت ہیں. ٹھیک ہے, تو 10 کے بارے میں آپ نے جو پوچھا بھی تھا تو وہ یہ ہے کہ لیکن جیسا کہ پیچھے عرض کیا جا چکا ہے کہ ان 7 کے علاوہ اور بھی کئی قرآتیں متواتر اور صحیح ہیں, چنانچہ بعد میں یہ غلط فہمی پیدا ہونے لگی کہ صحیح قرآتیں ان 7 ہی پہ میں منحصر ہیں. تو متعدد علماء مثلا علامہ شزائی اور ابو بکر بن مہران رحمتہ اللہ علیہ نے 7 کی بجائے 10 قرآتیں ایک کتاب میں جمع فرمائی. چنانچہ قراءات عشرہ کی اصطلاح پر مشہور ہو گئے. ان 10 قراءتوں میں مندرجہ بالا 7 قراء کے علاوہ ان تین حضرات کی قراءتیں بھی شامل کی گئیں, ابو جعفر یزید بن القعقاع رحمتہ اللہ علیہ جن کی قراءت مدینہ طیبہ میں زیادہ رائج ہوئی, یعقوب بن اسحاق حضرمی رحمتہ اللہ علیہ آپ کی قراءت زیادہ تر بصرہ میں مشہور ہوئی, اور خلف بن حشام رحمتہ اللہ علیہ جو حمزہ رحمتہ اللہ علیہ کی قراءت کے بھی راوی ہیں, آپ کی قراءت کوفہ میں زیادہ رائج تھی. اس کے علاوہ بعض حضرات نے 14 قاریوں کی قراءتیں جمع کی, اور مذکورہ 10 حضرات پر مندرجہ ذیل قراء کی قراءتوں کا اضافہ کیا. حسن بصری رحمتہ اللہ نے جو کہ بصرہ میں اسٹیبلش تھے, حالانکہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں پہ صحابہ کے ساتھ بہت وقت گزارا, لیکن بالآخر اسلامک یعنی جو اسلامی فوجیں تھیں ان کے ساتھ وہ بصرہ منتقل ہو گئے, اور وہاں پہ پھر یہ علم کا جو ہے نا وہ خزانہ, جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب بصرہ تشریف لائے تو انہوں نے سارے جو مسجدوں کے خطیب تھے نا ان سب کو منع کر دیا, کیونکہ وہ پھر فتنے شروع ہو چکے تھے اس زمانے میں, ان سب کو خطبہ دینے سے منع کر دیا, اور صرف حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت دی کہ آپ خطبہ دیا کریں, اور لوگ جو ہے نا پھر ان سے دین سیکھنا شروع ہو گئے, اور فرمایا کہ یعنی اس نے جو ہے وہ کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ کوفہ کو علم سے بھر دیا ہے. محمد بن عبد الرحمن ابن محیص رحمۃ اللہ علیہ جن کا مرکز مقام تھا, یحیی بن مبارک یزیدی رحمتہ اللہ علیہ جو بصرہ کے باشندے تھے, ابو الفرج شمبوزی رحمۃ اللہ علیہ جو بغداد کے باشندے تھے. بعض حضرات نے 14 قاریوں میں حضرت شمبوزی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سلیمان عامش رحمۃ اللہ علیہ کا نام شمار کیا ہے. ان میں سے پہلی 10 قراءتیں صحیح قول کے مطابق متواتر ہیں اور اس کے علاوہ شاذ ہیں. ٹھیک ہے, تو 10 جو ہے نا یہ یعنی بہت زیادہ تواتر کے ساتھ موجود ہیں, اور باقی شاذ ہیں. شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شاذ و نادر, جیسے اردو میں کہتے ہیں نا, کم کم یعنی پہچانی جاتی ہیں. تو آج کے دور میں 10 قراءتیں جو ہیں نا وہ دراصل الحمدللہ امت کے پاس اچھی زیادہ یعنی رائج ہیں, اور باقی جو ہے وہ اتنا رائج اب نہیں ملتی. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم تاریخ حفاظت قرآن کا ٹاپک شروع کریں گے, جو کہ بہت زیادہ نہ صرف یہ کہ دلچسپ ہے بلکہ ہمارے دور کے حساب سے بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے, بہت زیادہ ریلیونٹ بھی ہے. ٹھیک ہے, تاریخ حفاظت قرآن اس میں بڑے کام کی فائدے کی باتیں ہمارے لیے خصوصاً. باقی یہ قراءتوں کی جو ہے وہ تو پھر علمی ایک ڈسکشن تھی, وہ آپ کے معلومات میں اضافہ ہو گیا, لیکن ہم میں سے کون ہوگا سوائے ماشاءاللہ ہمارے حافظ صاحب ہیں, حافظ احسان صاحب جو کہ 7 قرآت یا ایک سے زیادہ قرآتوں کی انہوں نے تعلیم حاصل کری ہے, اور وہ ماشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے بھی ہیں, لیکن باقی کون ہوگا جو کہ ایک سے زیادہ قرآت کے اندر قرآن مجید پڑھ سکتا ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے اور بچوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ آگے بڑھیں اس کے اندر, لیکن ادروائز اٹس ناٹ ویری ریلیونٹ ٹو اس, موسٹ فار موسٹ آف اس. تاریخ حفاظت قرآن کا معاملہ ذرا مختلف ہے. اللہ تعالیٰ اس توفیق کی دعا کرتے ہیں اور قبولیت کی بھی ساتھ دعا کر کے اس کلاس کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.